ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம் ஸ்கந்த் அத்தியாய 16 ஸ்லோக் சங்கே 22. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹேன் உஸ்கா பூரா பூரா லாப் ப்ராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி ப்ராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்யந்தி மிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனா ஷலாகய சக்ஷுரு மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரயே. கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தம் அத்யைவ மே விஷதோ மானசராஜஹம்சா. ப்ராணாப்ரயாண சமயே கஃபவாத பித்தயே கண்டாவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்த்வா. ஸ்மரதவ்யம் சததம் விஷ்ணு விஸ்மர்தவ்யோ ந ஜாது சேத் சர்வ வித்தி நிஷேதாஸ்யோ. ஏதயோரேவ கிங்கர ஆராத்யோ பகவான் ப்ரஜேஷதனாய தத்தாம விருந்தாவனம் ரம்யா காசிதுபாசனா வ்ரஜவது வர்கீனயா கல்பிதா ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணமமாலம் பிரேம ஸ்ரீசைதன்ய மஹாபிரபு மதமிதம் தத்ராதரோ ந பரஹ வன்ஷி விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பரதருணபிம்பபல தரோஷ்டா. பூரணேந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்தநேத்ரா க்ருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்துவ அஹம் ந ஜானி. யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ரமருதஹ ஸ்துவந்தி யேஸ்தவி வேதீ சாங்க पट क्रमोपनिषदे गायन्तियं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि मद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक संख्या 22। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वाताय रवरोपितानि इतस्ततो वा शनपानवासः स्नानव्यवायोन् मुखजीवलोकम्। किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वाताय रवरोपितानि इतस्ततो वा शनपानवासः स्नानव्यवायोन् मुखजीवलोकम्। किं क्षत्रबन्धुन् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वाताय रवरोपितानि इतस्ततो वा शनवा इतस्ततो वा शनपानवासः स्नानव्यवायोन् मुखजीवलोकम्। शब्दात् किम क्षत्रबंधु, किम मतलब क्या, क्षत्रबंधु मतलब अयोग्य प्रशासक, कलिना कलयुग के प्रभाव से उपसृष्टान मोहग्रस्त, राष्ट्राणी यानी राज्य के मामले वा अथवा तय उनके द्वारा अवरोपितानी अर्थात अव्यवस्थित किया गया इत इधर तत उधर वा अथवा अशन यानी भोजन ग्रहण करने के लिए पान अर्थात पेय वास अर्थात आवास स्नान अर्थात स्नान व्यवसा व्यवाय संभोग अर्थात मतलब प्रवृत्ति सॉरी व्यवाय मतलब संभोग और उन्मुख मतलब प्रवृत्ति और जीवलोकम यानी मानव समाज। अनुवाद ध्यान से सुनिए। धर्म रूपी बेल गौ रूपी पृथ्वी से पूछ रहे हैं उसके दुखी होने का कारण। वे कहते हैं, अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक करती हैं? अब जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती और वह सारे कार्य नहीं कहीं कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही है, यथा खाना सोना डरना तथा सहवास करना। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी होती है। एक कुत्ता लोगों के समक्ष बिना हिचक के कुत्तिया के साथ संभोग कर सकता है, किंतु यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्यतः अनाचार कहा जाएगा। उस व्यक्ति को अपराधी की भांति दंडित किया जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों से बचता है। लोग इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना संलग्न होते हैं। सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों का यह पतन निश्चय ही शोचनीय है, क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत ही हानिकारक हैं। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने छात्रों के आचरण से प्रसन्न नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के प्रभाव से प्राप्त बुरी संगति के शिकार हैं। हमें श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि निर्दोष ब्राह्मण पुत्र अजामिल एक बार सड़क पर घूम रहा था तो उसने एक शूद्र दंपत्ति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकृष्ट हुआ और बाद में वह तमाम व्यवसनों में का शिकार हुआ। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अदम आवारा बन गया। यह सब कुसंगति का परिणाम था। तब अजामिल जैसा एक भक्ति योगी था, किंतु इस कलयुग में निर्धन निर्दोष विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं, जो पुरुषों को काम वासना की ओर ही प्रेरित करता है। सारे तथाकथित प्रशासन क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जिस तरह ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन के लिए होते हैं, उसी तरह क्षत्रिय प्रशासन के लिए होते हैं। क्षत्र बंधु शब्द उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषयक उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। आजकल वे इन उच्च पदों पर जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं, जो स्वयं जीवन के विधि विधानों में गिरी हुई है। जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न हो, वे भला किस तरह से उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उल्टी है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह चिंता की बात है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। आज धर्म रूपी बेल गौ रूपी पृथ्वी से उसके शोक का एक अन्य कारण पूछ रहा है। वे उनसे कह रहा है, किम क्षत्रिय बंधुन। क्षत्र बंधुन मतलब जो अयोग, जैसे बंधुन किसको बोलते हैं, जैसे ब्रह्म बंधुन किसको बोलते हैं, ब्राह्मण बंधु उसको बोलते हैं जिसने ब्राह्मण की पदवी तो स्वीकार कर ली है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीज का लेबल लगा लेते हैं अपने ऊपर लेकिन हमारे अंदर वो गुण नहीं होते तो उसको बंधुन कहा जाता है, जैसे द्विज बंधु बोला जाता है। जैसे ये अगर हम इस संस्था में आ जाते हैं, इस्कॉन संस्था में आ जाते हैं, तिलक लगा दिया, कंठी पहन ली, लेकिन अगर हम अपने चार नियम का पालन नहीं करते हैं, जप नहीं करते, तो फिर हम तभी भी हम क्या हुए, वैष्णव बंधुन हो गए, मतलब वैष्णव नहीं हुए। तो यहाँ पर बेल जो है वो गौ रूपी पृथ्वी से पूछा है, किम क्षत्रिय बंधुन कलिनोपसृष्टान, कि क्योंकि यहाँ पर कलयुग में सारे जो क्षत्रिय हैं वो अयोग्य हैं, वो सही तरह से क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय बंधुन हैं, जो राजा हैं, जो प्रशासक हैं, वो कलयुग के प्रभाव के कारण सब मोहग्रस्त हो रहे हैं। राष्ट्राणि वा तय रवरोपितानि, इसका मतलब है उन्होंने जो राज्य अधिकारी बने हुए हैं उन्होंने पूरे राज्य को उलट पुलट कर दिया। इतस्ततो, पूरा राज्य जो है, राज्य का कारोबार जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है कि किस तरह से अपनी प्रजा को भगवत प्राप्ति की ओर लेकर जाए, इस शास्त्र ने कहा है कि गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, राजा न सस्यात्। वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, वो पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो राजा राजा बनने के योग्य नहीं है, जो अपने आश्रित को न विमुंचित, कि वो अपने आश्रित को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर ना करे, मतलब भगवत प्राप्ति की राह में उसकी प्रगति करने में उसकी सहायता ना करे। तो आजकल के जितने भी राजा हैं वो तो बल्कि क्या कर रहे हैं, और भी जितने भी जीव हैं उनको ऐसा वातावरण उनको मिल रहा है कि वो अगर कोई भक्ति में आना भी चाहता है तो भी नहीं आ सकता, बल्कि वो तो कि अपने जो जितनी भी प्रजा है उसको केवल नष्ट करने के बारे में, उनके सद्गुणों को नष्ट करने के विषय में ही प्लानिंग हो रही होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पशुओं को पालते हैं, उनको खिला खिला कर बहुत मोटा करते हैं और भी उनको प्रेम से खिलाते हैं और भी सोचते हैं कि इनको और भी मोटा होना चाहिए, तो पशु बहुत खुश होता है कि ये सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको मार डालते हैं और उसी का मांस आहार करते हैं। तो इसी तरह से आज के जो राज्य के नेता हैं इस कलयुग में, प्रजा को पहले बहुत बहुत खुश करने का प्रयास करते हैं, उनसे बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं, मैं आपकी ये सेवा करूंगा, मैं आपकी वो सेवा करूंगा, हाथ पैर जोड़ के कि मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। और ऐसे करते करते जब उनको वोट मिल जाता है फिर उसी प्रजा को काट काट कर उसका शोषण करते हैं, ये टैक्स वो टैक्स, मतलब चूस के मार के रख देते हैं और फिर तो वो प्रजा 5 साल तक कुछ भी नहीं कर सकती। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि प्रजा के अंदर ही बुद्धि नहीं, जो राजा है वो तो वैसे ही क्षत्रिय बंधु हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रिय बंधु उन तथाकथित प्रशासकों या व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित शिक्षा पाए बिना ही प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए। उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होता, राजाओं को तो पता ही नहीं होता है, आजकल जो गवर्नमेंट संभालते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हमें किस तरह से प्रशासक करना है, बस वो बिठा दिया गया उनको वोट। और आजकल की इन उच्च पदों पर जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जो स्वयं जीवन के विधि विधानों में गिरी हुई है। जनता को स्वयं भी पता नहीं है कि हमें किस तरह का राजा युक्त करना चाहिए जो हमारी जीवन के वास्तविक दुख से हमें बचा सके, जो वास्तविक लक्ष्य की ओर हमें प्रगति करा सके। तो ये जो जनता है वो भी बिल्कुल जीवन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के विषय में नहीं जानती है। तो जिन लोगों का जीवन स्तर इतना निम्न है, जो कि स्वयं पता ही नहीं है, कभी शास्त्र खोल के देखा ही नहीं है, तो वो भला किस तरह से उच्च व्यक्ति का चुनाव कर सकेंगे। तो वो स्वयं भी, जनता भी गिरी हुई है और राजा भी गिरा हुआ है, सबका पतन हुआ हुआ है। अतएव कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उल्टी है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुख का कारण है। इसीलिए बेल पूछ रहा है गौ माता से कि क्या आप इसलिए दुखी हो कि राजा जो है वो सही तरह से अपने जो अपना धर्म है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब हर एक व्यक्ति जो है वो प्रार्थना करता था, अपनी प्रार्थनाओं में से बोलता था कि राजा जो है वो अच्छा राज्य करे। हम हृदय से भगवान प्रार्थना करते हैं कि राजा को सुखी रखना, राजा को सही निरोग रखना, ताकि वो सही तरह से अपनी प्रजा को पालन कर सके। लेकिन आजकल प्रजा को राजा के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है, राजा को प्रजा के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं। तो बेल पूछ रहा है अब तथाकथित प्रशासक इन कलयुगों के प्रभाव से मोहग्रस्त है और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है, क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए दुखी हैं? और आगे वो पूछते हैं इतस्ततो वाशन पान वास स्नान व्यवायोन मुख जीवलो, या फिर आपके दुख का कारण क्या? वाशन पान यानी अथवा अशन मतलब भोजन ग्रहण करना, पान मतलब जल को पीना, वास मतलब घर बनाना या रहना, स्नान करना और व्यवाय यानी संभोग करना। तो ये जो कार्य हैं, ये सारे कार्य पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। आहार निद्रा भई मैथुन ये पशु भी करते हैं और ये कार्य ऐसे हैं कि मनुष्य जीवन में भी करने होते हैं, खाना सोना पीना और घर बनाना और सहवास करना। लेकिन जैसे कोई गवर्नमेंट होती है कोई देश की, जब वो कोई देश का निर्माण करती है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और जो भी नागरिक उस देश में रहता है तो उसको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो वो अपराधी हो जाता है और उसे दंड प्राप्त करना पड़ता है। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया तो उसके साथ साथ मनुष्यों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो शास्त्र के अनुसार ही मनुष्य को एक अपने मनुष्य जीवन में जीवन बिताना है शास्त्र के अनुसार। जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद के आते हैं उसके साथ एक मैनुअल गाइड मिलता है, तो उस प्रोडक्ट को हमें उस गाइड के अनुसार ही यदि हम ऑपरेट करेंगे तभी उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। उसी तरह से यहाँ मनुष्य जीवन जब जीव को मिलता है तो उसके साथ साथ भी एक मैनुअल गाइड होता है जो कि शास्त्र है और हमें शास्त्रों के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम अपराधी हो जाएंगे और दंड के भागी बनेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट किसी देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है तो वो केवल मनुष्य के लिए होते हैं ना। कभी भी किसी कुत्ते को रेड लाइट पर यदि वो रोड क्रॉस करता है तो क्या गवर्नमेंट पकड़ लेती है कि भाई आपने रेड लाइट हो रही थी तो फिर आपने क्यों रोड क्रॉस किया? नहीं, वो रूल किसके लिए है? मनुष्य के लिए। और मनुष्य यदि ये बोल दे, वो गाड़ी चला रहा है और उसने रेड लाइट पर यदि क्रॉस कर लिया तो ट्रैफिक पुलिस आकर उसको रोके और तुम उसे कहे तुमने रेड लाइट के ऊपर क्रॉस क्यों किया, तभी वो बोले अच्छा रेड लाइट के ऊपर नहीं क्रॉस करना था, मुझे तो पता ही नहीं था, तब क्या उसे छोड़ देंगे कि ठीक है भाई इसको पता नहीं था तो कोई बात नहीं आइंदा से ऐसे बोलेगा? नहीं, उसको दो लाठी और मारेगा, बोलेगा तुम मनुष्य बने हो, कोई तुम जानवर तो नहीं हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन तो फिर चलाने की जरूरत क्या थी गाड़ी? पहले तुमको ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन जानने चाहिए, उसके बाद तुमको गाड़ी चलानी चाहिए थी। तो इसी तरह से जब हम मनुष्य बनते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे सहवास करना है, कैसे पीना है, क्या कैसे घर में रहना है, ये सब कुछ शास्त्रों में बताया गया। भगवान ने भगवत गीता में 9.27 में कहा यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पण। आप चाहे जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे। भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आपको यज्ञ के तरह यज्ञ समझ कर सारे कार्य को करना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर ऐसा नहीं करोगे तो लोकोयम कर्म बंधन, तो फिर वही कर्म तुम्हारे बंधन का कारण बनेंगे। इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की भांति करनी चाहिए, यानी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन शास्त्र में लिखे हुए हैं उसी के अनुसार मनुष्य को कार्य करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अपराधी होगा और दंडित माना जाएगा। अतएव मनुष्य के लिए कुछ विधि विधान है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। भले सामान्य आवश्यकता है, आप खा रहे हो, साधारण सब काम है, कोई सामान्य है, कोई आप गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप पी रहे हो उसके लिए भी, सो रहे हो उसके लिए भी, जाग रहे हो उसके लिए भी, संतान उत्पन्न कर रहे हो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुत्तों और जानवरों की तरह हम बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नहीं जी सकते। तो जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तो ऐसे विधि विधानों से बचता है, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, फिर वो भी जानवरों की तरह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीता है, उसके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति बन जाता है, वो भी जानवरों की तरह ही कार्य करता है। तो लोग इस कलयुग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना ही संलग्न होते हैं। तो यही पूछ रहे हैं वो कि क्या तुम इसीलिए दुखी हो कि लोग जो है वो अपने जो खाना पीना सोना इत्यादि जो कार्य हैं उसमें विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सनद रहते हैं, क्या आप इस कारण से दुखी हो? श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल दी है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सामाजिक तथा चारित्रिक नियमों का यह पतन निश्चित ही शोचनीय है। यानी कि जो ये कैरेक्टर लूज हो रहा ना आजकल जीवों का, वो वास्तव में दुख का कारण है। इसे अंग्रेजी में एक कहावत है वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। यदि दौलत चली जाती है ना तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो हाथ की मेल है, आज गई तो कल वापस आ जाएगी। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। यदि आपकी सेहत खराब हो जाती है तो समझ जाओ कि आपका कुछ लॉस हुआ है, दुखी होने की है बात उसमें, परंतु कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यदि आपका चरित्र विनाश हो जाता है तो हर एक वस्तु का विनाश हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल जीवों का चरित्र लॉस हो गया है, चरित्र का विनाश हो गया है, तो वास्तव में शोचनीय है, क्योंकि ऐसे जानवरों जैसे आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होते हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही वास्तविक कारण बताते हैं कि आज की न्यू जनरेशन का चरित्र इतना क्यों बिगड़ गया है, क्यों जीव जो है वो अपने चारित्रिक नियमों का पतन किस तरह से हो रहा है, क्यों हर एक व्यक्ति विधि विधानों का उल्लंघन करके अपनी इंद्र तृप्ति का काम कर रहा है, क्यों वास्तविक विधि विधानों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उसका कारण यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि एक निर्दोष ब्राह्मण अजामिल, वो निर्दोष था, ब्राह्मण भी था, वो वहां पर कोई गलत कार्य करने गया नहीं था, वो उस बाग में पूजा के लिए फूल चुनने के लिए गया था। अचानक से उसने एक ऐसा दृश्य देख लिया कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था और ये देखते ही उसका पतन हो गया। उसने सोचा कि मैं अपने मन से ये जो गंदा दृश्य मैंने दिखाया है उसकी छवि हटाऊं, मगर ये जो गंदी चीज होती है ना उसके अंदर ऐसा एक अट्रैक्शन ऐसा होता है कि वो अपने छवि को हमारे दिमाग से निकलने नहीं देती है। अगर हम कोई गलत चीज देख लेते हैं तो फिर वो कंटिन्यूस जब भी, अब देखो जब हम जप करते हैं तब कैसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, जब हम जप करते हैं तो गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, हमने वो आम टाइम पर भी वो विचार नहीं आते हैं लेकिन जप करने के टाइम पर या सेवा करने के टाइम पर आ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, वो मानसिकता पर एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि फिर वो निकलते ही नहीं है उसमें से। अजा मैं सोच रहा था कि मैं किसी तरह से इस सोच से अपने आप को आजाद कर सकूं लेकिन नहीं कर पाया। इसी तरह से श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसने एक बार ये दृश्य देखा और उसका पतन हो गया। वह शुद्ध ब्राह्मण के पद से गिरकर अधम आवारा बन गया। ये सब क्यों हुआ? जरा सी कुसंगति का, हालांकि उसने संगति भी नहीं की, केवल उसकी इंद्रिया ने वो एक गलत चीज देख ली थी। और आज का साधारण सा जीव, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ तो हर क्षण हर समय नित्य ऐसा दृश्य उनको देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में निर्धन निर्दोष विद्यार्थी नित्य सिनेमा के शिकार होते हैं जो पुरुषों को काम वासना की ओर प्रेरित करते हैं। केवल ऐसे ही तो दृश्य दिखाए जाते हैं आजकल की न्यू जनरेशन को। क्या सीखेंगे वो हर एक मोबाइल में, इंटरनेट में, यूट्यूब में ऐसी गंदी गंदी चित्र हैं, ऐसे अश्लील दृश्य हैं कि आजकल का जो युवक है और जो कन्याएं हैं वो इससे प्रेरित हुए बगैर रह नहीं सकती। हम समझते हैं कि बहुत एडवांस हो गए हैं लेकिन इससे हमारा चरित्र, हमारी संतान का चरित्र कितना बिगड़ रहा है। हम अपनी संतानों को कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां पर जाकर ऐसे कार्य होते हैं जिनको सोचते हुए भी लज्जा आने लगती है। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है कि मनुष्य मनुष्य के स्तर से गिरकर पशुओं की तरह बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपने सारे कार्य कर रहा है। तो इसलिए बेल रूपी जो धर्म है वो पूछ रहा है गौ से जो कि पृथ्वी रूपी है, उनसे कह रहा है कि क्या ये जो आजकल की जनता है जो खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती है और सारे कार्य कहीं भी बगैर किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के कैसे भी कर लेती है इसके लिए, तो फिर क्या आप इसी का कारण अप्रसन्न हो? अब ये बेल रूपी जो धर्म है वो अंतिम दो बातें कहेगा उनसे कि आप, मुझे लगता है कि आपके दुखी होने का वास्तविक कारण क्या है, कि जब कृष्ण यहाँ पर थे, आपकी आपके ऊपर जब कृष्ण अपने चरण कमल को रखते थे तो उससे आप कितनी आनंदित होती थी, आप कितनी प्रफुल्लित होती थी। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, इसी के कारण आप दुखी हो। और वास्तव में भक्तों, पृथ्वी की वास्तविक दुख का कारण यही है, क्योंकि जब पृथ्वी पर भगवान के चरण होते हैं तो भले कितना ही अपराध हो, कितना ही दुख हो, क्योंकि भगवान के आने का कारण ही ये है कि वो इस पृथ्वी से अधर्म की नाश करने के लिए आते। भगवान कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान का होना इस बात की गारंटी है कि अधर्म का नाश होने वाला। लेकिन अब क्योंकि कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने निज धाम में चले गए हैं, तो पृथ्वी इससे बहुत दुखी है कि अब कौन अपराधियों का नाश करेगा, कौन मुझे इन अधर्मियों से छुटकारा दिलाएगा और कौन धर्म की स्थापना करेगा, इसके कारण बहुत ज्यादा दुखी है। तो वास्तव में भक्तों, पृथ्वी के इस दुख को दूर करने का एक ही साधन है, अभिनत्वान नाम नामिनो। भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, वो अभिन्न है। और इस कलयुग में कृष्ण ने अपने नाम रूप में अवतार लिया है, कली काले श्री कृष्ण नाम अवतारे, कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतारे। तो इस कलयुग में भगवान नाम के स्वरूप में जो है वो अवतार लिए हैं। और अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो कलयुग के इन सब लक्षणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम पृथ्वी के इस दुख को, दुखमयी दशा को दूर कर सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, पवित्र कथाओं का श्रवण करना चाहिए, ताकि कलयुग का आक्रमण हम पर ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, के प्रसाद रहेगा। और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।